जीवन एक गोरख धंधा है। ऑडिबल की विशेष प्रस्तुति ओम स्वामी के विचार, ओम स्वामी की आवाज में। आहे तहकीक में हर गाम पे उलझन देखूं, वही हालातो ख्यालात में अनबन देखूं, बन के रह जाता हूं तस्वीर परेशानी की, गौर से जब भी कभी दुनिया का दर्पण देखूं। एक ही खाक से फितरत के ताजादात कितने, कितने हिस्सों में बटा एक ही आंगन देखूं, कहीं जहमत की सुलगती हुई पतझड़ का समा, कहीं रहमत के बरसते हुए सावन देखूं। आप ही अपना पर्दा हो, तुम एक गोरख धंधा हो।
हम आरंभ करते हैं। आज तीसरा प्रकरण है। पहले में हमने आपको बताया था कि कैसे बुद्ध ने 12 निदान बताए, जिससे कि मनुष्य निरंतर पुनर्जन्म के उस आवागमन में पड़ा रहता है। जब जब मनुष्य दुखी होता है, हमेशा सोचता है जीवन व्यर्थ है, संसार व्यर्थ है, बस अब मुझे मुक्ति चाहिए। जब जब सुखी होता है, ये जो सोच है दुख के साथ ही चली जाती है। सुखी होता है उस समय मुक्ति की भाषा नहीं बोलता, उस समय कहता है अभी मेरे 4 दिन पड़े हैं, मैं सुख ले लूं, आनंद ले लूं। जब दुखी होता है तब कहता है कि बस बहुत हो गया, अब मुझे जाना है। इसीलिए ये जो मन की अवस्था है, निरंतर बदलती रहती है, समुद्र की लहरों की भांति चलती रहती है, उसी के कारण ही हम अधिकतर समय दुखी रहते हैं। कितना प्रयत्न, कितना एक मनुष्य को यत्न करना पड़ता है सुखी रहने के लिए। शरीर को भी स्वस्थ रखना है तो कितना उसके लिए प्रयास करना है, अच्छा खाना है, अच्छे से सोना है, अच्छे से व्यायाम करना है, नहीं करेंगे तो शरीर खराब होना शुरू हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि मन का ध्यान नहीं रखेंगे तो मन जो है खराब होना शुरू हो जाता है। छोटी छोटी बात पे व्यक्ति को गुस्सा आता है या व्यक्ति एक खिन्न हो जाता है। तो मन का ध्यान रखना ही मेरे अनुसार इस गोरख धंधे से बाहर निकलना है। तो बुद्ध ने कहा कि पहला कारण है अविद्या। अविद्या से चित्त की वृत्तियां बनती हैं, जिसको कि उन्होंने संस्कार कहा। उससे चेतना की उत्पत्ति होती है, चित्त, जिसको कि उन्होंने विज्ञान का नाम दे दिया। विज्ञान से नाम रूप का बोध होता है, नाम रूप से मनुष्य षडायतन अपने पंच इंद्रियों और मन की ओर जाता है, उससे स्पर्श की अनुभूति करता है, स्पर्श से वेदना है और वेदना से तृष्णा है और तृष्णा से मोह है, जिसको कि बुद्ध ने एक बड़ा सुंदर शब्द दिया, अपादान। अपादान अर्थात कि ये चीज मेरी हो जाए, परिग्रह। ये नहीं कि केवल एकत्रित करते रहना, कि जैसे किसी के बारे में मनुष्य कभी कभी पोजेसिव हो जाता है चीजों को लेकर, अपनी वस्तुओं को लेकर, अपनी ऊर्जा को लेकर, अपने धनोपार्जन को लेकर, अपने लोगों को लेकर। और बड़ी ही एक ऐसे सूक्ष्म रेखा है जिसके एक और अपादान खड़ा है कि मुझे ये वस्तु मेरी है, दूसरी ओर ध्यान खड़ा है कि मुझे इस वस्तु का ध्यान रखना है, इस व्यक्ति का ध्यान रखना है। यदि मन का ध्यान ना हो तो ध्यान अपादान की ओर चला जाता है। और यदि अपादान आ जाए तो मोह और आसक्ति आ जाती है। और बुद्ध ने कहा है उससे मनुष्य को भव अपने होने का एक बोध होना शुरू होता है एक नकारात्मक ढंग से, अर्थात अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार तभी होगा यदि मैं हूं तो ही मैं सोचूंगा कि यह वस्तु मुझसे भिन्न है, तो ही एक द्वैत का बोध है, अन्यथा तो नहीं। और अपादान से जो भाव भव होता है उससे जाति है, जिसको कि उन्होंने पुनर्जन्म कहा, और जाति से मनुष्य जो है जरा और मरण के चक्र में आ जाता है, वृद्ध भी होगा और मृत्यु भी होगी, ये निश्चित है मृत्यु तो, और मृत्यु से ही नया जीवन जो है शुरू होगा। अब सुनने में तो बड़ा भारी दर्शन शास्त्र लगता है, पर इसका व्यवहारिक रूप से इसको जीवन में कैसे उतारा जाए, उसके लिए मैंने सोचा है कि जो मनुष्य के पथ पर अड़चने आती हैं और जो इसका उपाय है वो आपसे अगले प्रकरणों में साझा करूंगा। और जो अब का है तृतीय प्रकरण, उसमें जो संस्कार है कि किसी ने बोला अच्छा अच्छा लग गया, हम फूल के कुप्पा हो गए, किसी ने बोला बुरा, हमें बुरा लग गया, गुब्बारा फूट गया तुरंत, जो भी बाहर है हवा या गंध वो सारा ऐसे बाहर दूसरे के ऊपर छपाक से आके पड़ेगा, और आपके ऊपर भी, गुब्बारे में कभी पानी भर के फोड़ के देखना पास में, आपके वस्त्रों पर भी आएगा, दूसरे के वस्त्रों पर भी। कहते हैं एक संत थे, सिद्ध मानते थे सब उनको, और एक बार दो लड़कों ने उनकी परीक्षा लेने की सोची, हाथ में एक छोटा सा पक्षी छुपाकर वो संत के पास चले जाते हैं। कहते हैं सुना है आप सिद्ध हैं, सब कुछ जानते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि मेरे हाथ में इस समय क्या है? संत ने कहा उस प्रश्न का उत्तर देकर क्या करूंगा जिसका उत्तर तुम्हें मालूम ही है, उससे तो किसी को कोई लाभ नहीं, जब तुम्हें पता ही है कि तुम्हारे हाथ में क्या है तो मैं बताकर क्या करूंगा। तो लड़कों ने कहा ऐसी पहेलियां मत बुझाइए, अगर तो पता है तो बता दीजिए, पक्षी है। संत ने कहा तुम्हारे हाथ में? तो लड़कों ने कहा हो सकता है हल्की सी एक आवाज आई थी शायद, या हो सकता है हमारी मुट्ठी में से आपने थोड़ा देख लिया हो। ये चमत्कार का सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह इसी बात का होता है, जब किसी को कोई दिव्य अनुभूति दी भी जाए उसका मन बोलता है शायद ऐसे हो गया होगा उस समय, या शायद वैसे हो गया होगा, ना एक से, ना एक सौ से, ना एक हजार से, ना असंख्य चमत्कारों से मनुष्य का मन नहीं भर सकता, निरंतर और चाहिए होते हैं। संत को उन्होंने कहा कि हो सकता है आपने देख लिया हो, यदि ये बता दें कि जिंदा है या मुर्दा, जीवित है या मृत, तो हम आपको मान जाएंगे। तो संत जो है मुस्कुराने लगते हैं, कहते हैं बेटा ये मैं कहां से बता सकता हूं, क्योंकि लड़कों ने तो सोच रखा था यदि जीवित बोल दिया तो गर्दन ऐसे कर देंगे, यदि मृत बोल दिया तो हाथ ऐसे खोल देंगे, उड़ जाएगा। संत को, उस सिद्ध को झूठा साबित कर देंगे एक क्षण में। मृत है या जीवित, अगर ये बता दें तो मान जाएंगे। ऐसा मैं कैसे बता सकता हूं, सिद्ध ने कहा, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर मेरे हाथ में नहीं है, इसका उत्तर तो तुम्हारे ही हाथ में है। ये तो तुम्हारे हाथ में है कि ये जो पक्षी है ये जीवित होगा या मृत। मन के भाव को समझ गए थे सिद्ध। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी से पूछते हैं कि मेरा भविष्य कैसा होगा, क्या मैं जीवन में कभी सुखी रह पाऊंगा या नहीं, क्या मैं आनंदित हो पाऊंगा या नहीं, या मैं किसी दूसरे को दुख दे पाऊंगा या नहीं, उस प्रश्न का उत्तर दूसरा व्यक्ति नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता, गुरु भी नहीं दे सकता। उसका उत्तर तो आप ही के हाथ में है। जिस चीज का समाधान मेरे हाथ में है, इससे बड़ी अज्ञानता क्या होगी कि उस समस्या के समाधान के लिए हम जगह जगह खोजते फिरें। चाहे वो खोज शास्त्रों में हो, चाहे वो खोज किसी व्यक्ति विशेष में हो, चाहे वो खोज किसी मत में हो, जो चीज मेरे हाथ में है उसके लिए मैं ही उत्तरदायी हूं। और मेरे जीवन का आनंद, मेरे जीवन की प्राप्ति, मेरे जीवन का सुख, मेरे मन की अवस्था, यह सर्वथा मेरे ही हाथ में है। ऐसी जो सोच होती है ये प्रज्ञावान मनुष्य की होती है, क्योंकि सब कुछ सोच से ही विकसित होता है। अविद्या भी एक प्रकार की सोच है। भगवान ने बड़ी सुंदर बात बोली, श्री कृष्ण ने भगवद गीता में, जित आत्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाशम कांचना। सुहृन् मित्र उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर् विजश्यते। कि जित आत्मनः प्रशांतस्य, जिसने अपनी इंद्रियों को जीता हुआ है और जिसका मन शांत हो गया है, परमात्मा समाहित, वो अपनी जीवित अवस्था में उस परमात्मा में प्रविष्ट कर चुका है, समा चुका है। और ऐसा नहीं कि अशांति या शांति का अर्थ है कि आप बुत बन जाएंगे। ऐसा नहीं कि अगर अशांत हैं तो बंदर ही रहेंगे, या शांत हैं तो किसी मूर्ति की भांति आप बैठ जाएंगे, पर अधिक देर तक नहीं रुकेगी। आपका क्रोध, आपकी नकारात्मक भावनाएं जल पर लकीरों की भांति होंगी, जितनी बार खींचें उतनी बार जाती हैं तुरंत, अधिक समय नहीं रुकती। शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो, शीत है या उष्ण है, गर्मी है या सर्दी है, मान है या अपमान है, सुख है या दुख है, ये रंग लगे रहेंगे। इसमें जो सम है वही भगवान ने बोला है योगी है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, अब उसकी खोज जो है खत्म हो गई है, क्योंकि जब आपने ये जान ही लिया, जब आपने ये मान ही लिया, जब आपने ये समझ ही लिया कि जो भी है आपके भीतर है, कि मेरे जीवन में मेरे सुख और दुख का कारण मैं ही हूं, फिर तो खोज खत्म हो गई ना। फिर तो जो खोज है उसने एक दूसरा रास्ता ले लिया। जो बाहर की खोज थी वो दूसरी ओर मुड़ गई, भीतर की ओर चली गई कि मैं अपनी ही कमियां देखूंगा। ऐसा हर समय शायद संभव नहीं, मुझसे भी नहीं हो पाता, पर कुछ समय तो हो ही जाता है। फिर उत्तर भी अपने में से ही निकल के आता है मनुष्य के। समलोष्टाशम कांचना, कांतय, कभी स्वर्ण मिलेगा और कभी मिट्टी मिलेगी। सम, उसमें जो सम है कि हर सुख सुविधा प्रतिदिन नहीं मिल सकती, कभी दुख भी आएगा, कभी रोग भी आएंगे। जो मित्र और शत्रुओं के बीच में उदासीन हो जाए कि कोई समस्या नहीं, हर कोई आपको पसंद नहीं कर सकता, हर कोई आपसे घृणा नहीं कर सकता, परंतु संस्कार मनुष्य के इतने प्रबल होते हैं, मन इतना विचित्र होता है कि लाख लोग तारीफ कर रहे हों, एक व्यक्ति बुरा बोल दे, वही दिमाग में घूमता है। जब जब मिलेगा वो व्यक्ति, उसकी एक ही वही बात याद आएगी। 10 साल के बाद भी, 20 साल के बाद भी, 30 वर्ष के बाद भी भूलती नहीं बात, क्योंकि हमने उसको जीवित रखा हुआ है। साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर विशेष्यते, जो ये जानता है कि एक से लोग नहीं हो सकते। दूसरे प्रकरण में हमने आपसे बताया था कि भिन्नता का नाम ही जीवन है। किसी ने ब्लैक लोटस ऐप में स्वामीनार में लिखा कि स्वामी, जो मैं कई बार आपके बारे में अपशब्द का भी प्रयोग किया और मुझे आपके गाने को लेकर भी मैंने बहुत आलोचना की, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। तो हमने उनसे कहा, इसमें तो क्षमा मांगने वाली कोई बात ही नहीं है, मैंने तो आपके लिए कभी गाया ही नहीं, ना तो मैंने कोई शो करके आपको टिकट दी कि टिकट ले लीजिए और आके मेरा अटेंड कर लीजिए। मैंने तो केवल अपने इष्ट के लिए गाया है। उस समय सभा लगी हुई है या नहीं, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि सब आपको अच्छा कह रहे हैं तो आप एक ऐसे वातावरण में बैठे हैं जो विषैला है। जब सब आपको अच्छा कहें, इसका मतलब सब सच्चे नहीं है आपके आसपास, क्योंकि कोई आपको सच्चाई बता ही नहीं रहा। सभी यदि आपको अच्छा ही कहें, भाई बहुत अच्छे हो स्वामी जी, आप तो कमाल के हो, इसका मतलब आपको सच्चाई जो है आप तक नहीं पहुंच रही। जो आपके अच्छे होंगे आपका अच्छा भी बताएंगे और बुरा भी बताएंगे। हो सकता है कभी सूप खराब बनाओ और भोजन बाकी ठीक हो, बता देंगे। यदि सब अच्छा ही अच्छा सुनना है तो अपने बारे में अच्छा बोल के एक टेप लगा लो, उसको वो चलती रहेगी। उसको आजकल तो बड़ा आसान है, वो MP3 प्लेयर में अपने बारे में खूब अच्छा बोलो, भाई आपसे अच्छा कोई नहीं, आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं, आप बड़े ही बड़े हो, अच्छे ही अच्छे हो। उसके बाद उसको ऑन करके सुबह शाम को अपने कानों से उसको निकाला, खुश रहोगे। अच्छा ही सुनना है ना, उसमें पिच को चेंज कर सकते हैं, उससे लगेगा कोई और बोल रहा है आवाज को। जिस दिन मनुष्य के हृदय से ये भावना चली जाए ना कि सब मेरे बारे में अच्छा बोलें, उस दिन दूसरों का बुरा बोलना आपको बुरा नहीं लगेगा। जितने भी हमको ईमेल आती है या कमेंट्स लिखे जाते हैं, जिसमें कई बार घृणा वाले भी होते हैं, टिप्पणी करते हैं लोग, बुरा नहीं लगता बिल्कुल भी, क्योंकि जब अच्छे की चिंता नहीं तो बुरे की क्या होगी ना। जो लोग मायने रखते हैं जीवन में, वो मेरे लिए अच्छे हैं, मैं उनके लिए अच्छा हूं, बात खत्म। समाज जहां है वहीं रहेगा। एक जीवन का जो रस है ये तभी तक है जब तक गोरखधंधा है, क्योंकि जब समझ में आ जाए ना तो जादू का रस नहीं रहता। जादूगर होता है ना, वो कुछ करके दिखाता है तो कुछ करतब, कुछ कारनामा, कुछ चमत्कार तो लगता है, आनंद आ गया। आप गए, 50-100 रुपए की टिकट ली या 500 की, अगर वो जो जो भी कर रहा है आपको सब पता चल रहा है कैसे कर रहा है, तो बोले कहाँ आ गए, कोई रस नहीं, 500 रुपये बर्बाद कर दिए। एक समुद्री जहाज था, वहां पर एक जादूगर था। लंबी यात्रा थी, लंबी यात्रा थी 6 हफ्ते की, तो वहां पर लोगों के मनोरंजन के लिए एक जादूगर भी रखा हुआ था। वो नए नए लोगों को रोज करके दिखाता कारनामे। और वहां पर एक तोता भी था, और तोता बहुत शातिर था। जैसे ही जादूगर कुछ करता, बोलता ये यहां देखो, तोता तुरंत बोल देता कि वो जादू का क्या रहस्य है, इसके रुमाल के नीचे देखो, इसके पांव के नीचे देखो, इसके बाएं हाथ की ओर देखो। तो जादूगर ने उसको मिर्ची खिला के देखी, गाजर दे के देखी, सब कुछ खिला के देखा कि भैया तोते तू क्यों मियाँ मिठू बन रहा है, इतना चुप रह, सारे लोग इससे परेशान हो रहे हैं, मेरा मेरी रोजी रोटी पे लात बज रही है, क्यों उस समय बोल रहा है। पर वो तोते को भी रस आ रहा था कि मैं इसका जादू बिगाड़ रहा हूं, इससे बड़ा जादूगर तो मैं हूं जिससे लोगों को ये मनोरंजन कर रहा है, उससे ज्यादा तो मुझे पता है। वो जब कुछ करने लगे, इसके सर पे देखो, इसके बाईं ओर देखो, इसके टेबल के नीचे देखो, तोता बोल के सारे रहस्य खोलता रहा, सारे जादू का रस जो है चला गया। इतने में क्या होता है, भयंकर तूफान आता है समुद्र में, और जो समुद्री जहाज होता है वो नीचे से टूट जाता है, एक हिमशिला से लगने से टूट जाता है, और पानी भरना शुरू हो जाता है, और जहाज जो है डूबना शुरू हो जाता है। एक ऐसा समय आता है जादूगर और तोता दो ही बच जाते हैं। एक तख्ता, उसके ऊपर जादूगर बैठा हुआ है, एक लकड़ी, उसके ऊपर तोता बैठा हुआ है। वो तोते की ओर देख रहा है और तोता जादूगर की ओर देख रहा है, दोनों चुपचाप दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते रहते हैं। थोड़ी देर बाद तोता बोलता है, अबे चतुर सुजान, जा मैंने हार मानी, बता दे किश्ती कहाँ पे है हमारी, बता दे समुद्री जहाज कहाँ पे है, मैंने हार मानी, तू मुझसे बड़ा जादूगर है। पर कोई समुद्री जहाज तो बचा नहीं। तोता बेचारा सोच रहा है ये जादू किया है इसने, पूरा जहाज जो है अदृश्य हो गया। जब मनुष्य मन से जीवन को जीता है तो जादू का रस होता है एक। जब मन रूपी तोता सारे रहस्य खोलता चला जाए ना, ये इसलिए हुआ है, ये उस लिए हुआ है, जब मन बोलना शुरू कर दे, दिमाग चलना शुरू कर दे, तो हो सकता है ज्ञान आ जाए, पर नीरसता भी आ जाएगी। पांडित्य से मनुष्य रसवान नहीं होता, रसहीन होता है। मंदिर में भी कितने ज्ञानवान कोई पुजारी हो, पंडित हो, कितने खांसते देखे हैं आपने। हाँ, दक्षिणा देंगे तो अलग बात है, हंसी भी आ जाएगी, परंतु अधिकतर समय कुछ ऐसा नहीं, क्योंकि ज्ञान से मनुष्य को केवल ठीक और गलत ही दिखता है। जितना ज्यादा ज्ञान उतनी ज्यादा अविद्या, क्योंकि भ्रांति तब पड़ती है जब हम सूचना को ज्ञान मान लेते हैं, जानकारी को ज्ञान मान लेते हैं। जो मैं यहां पर बैठकर आपको दे रहा हूं ये जानकारी है। इसका मिश्रण जब आपके संस्कारों से होगा, इसका मिश्रण जब आपकी अनुभूति से होगा, आप जो पहले से जानते हैं उस ज्ञान से होगा, तब जाकर ज्ञान की उत्पत्ति होगी। इसलिए ज्ञान कोई किसी को दे नहीं सकता। ज्ञान हमेशा जो है भीतर से उत्पन्न होता है। अब यदि मन का तोता जो है बोले जा रहा है, और ये हम हर चीज समझना नहीं चाहते या समझकर कुछ करेंगे भी क्या, तो सबसे श्रेष्ठ इसका उपाय क्या है? पूरे 12 निदानों में यदि मुझे उनका सारांश लेकर आपको एक चीज बतानी हो जिसको धारण करने से मनुष्य जीवन में अग्रसर हो सकता है किसी भी पथ पर, यह शायद मुझे 10वें प्रकरण में बतानी चाहिए, परंतु आज ही बता देता हूं। वो है स्मृति, जिसको कि हम इंग्लिश में माइंडफुलनेस बोल देते हैं। स्मृति से ही जागरूकता है, और जागरूक व्यक्ति ही उस बात को जानता है कि मैं क्या कर रहा हूं या क्या बोल रहा हूं। कहते हैं, आहे तहकीक में हर गाम पे उलझन देखूं, वही हालातों ख्यालात में अनबन देखूं, बन के रह जाता हूं तस्वीर परेशानी की, गौर से जब भी कभी दुनिया का दर्पण देखूं, एक ही खाक से फितरत के ताजादात कितने, कितने हिस्सों में बटा एक ही आंगन देखूं, कहीं जहमत की सुलगती हुई पतझड़ का समा, कहीं रहमत के बरसते हुए सावन देखूं, हैरत की एक दुनिया हो, तुम एक गोरख धंधा हो। आहे तहकीक में हर गाम पे उलझन देखूं, मतलब मैं सत्य के एक पथ पर जा रहा हूं, तहकीकात करने निकला हूं, सत्य की खोज में निकला हूं। आए तहकीक अर्थात मैं उस खोज में निकला हूं सत्य की। हर गाम पे उलझन देखूं, उस सत्य की खोज में भी हर गाम अर्थात हर कदम पे मुझे इतनी अड़चने मिल रही हैं, इतनी उलझने। कितने अच्छे कार्य के लिए मैं निकला हूं, फिर भी इतनी उलझन, ऐसा क्यों है? वही हालातों ख्यालात में अनबन देखूं, वही मेरे जिंदगी की कहानी, वही हालात और वही ख्यालात, जगह बदल के देखी, लोग बदल के देखे, समाज बदल के देखा, परिस्थिति बदल के देखी, परंतु मेरे हालात और मेरे ख्यालात ना बदले। उसमें एक निरंतर अनबन रही, क्योंकि जो मेरे हालात थे या हैं, मेरे ख्यालात उससे नहीं मिलते, वो कुछ और चाहते हैं। जो मेरे ख्यालात हैं, मेरे हालात उससे नहीं मिलते। बन के रह जाता हूं तस्वीर परेशानी की, गौर से जब भी कभी दुनिया का दर्पण देखूं। दुनिया का दर्पण, दर्पण में आप स्वयं का प्रतिबिंब देखते हैं, तो समाज जो है एक दर्पण मात्र है, एक शीशा है जिसमें आपको अपनी ही झलक दिखाई देगी। कपटी को सब कपटी दिखेंगे, चालाक को सब चालाक दिखेंगे, भोले को सब भोले दिखेंगे, क्रोधी को सब क्रोधी दिखेंगे। जब व्यक्ति क्रुद्ध होता है, दूसरे को बोलते चिल्ला क्यों रहे हो, जबकि वो खुद चिल्ला रहा होता है, उसको लगता है दूसरा व्यक्ति जोर जोर से बात कर रहा है, जबकि वह स्वयं जोर जोर से बात कर रहा होता है। एक ही खाक से फितरत के ताजादाद इतने, कितने हिस्सों में बटा एक ही आंगन देखूं। एक ही खाक, मिट्टी के एकमात्र कण से फितरत, वो भी इतने ढंग का है। फितरत के ताजादात कितने, इतना सारा विरोधाभास, इतना उसमें द्वंद है, एक मिट्टी के कण में भी इतनी एक जैसे विरोधाभास, एक तनाव है, एक एक प्रश्न है। एक मिट्टी का कण लेकर भी नहीं कह सकते कि ये इसका अर्थ ये है। कहते हैं मुल्ला नसरुद्दीन एक बार उसने अपने गांव में ये घोषणा कर दी कि उसने ईश्वर को समझ लिया है, उसके लिए किसी काबे में जाने की आवश्यकता नहीं, किसी मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं। व्यक्ति घर में बैठकर बस अच्छा जीवन व्यतीत करे, वही ईश्वर की प्राप्ति है। तो गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने कहा ये काफिर हो गया है, इसको सजा मिलनी चाहिए। बात पहुंची सरपंच तक, पंचायत बिठा दी गई। मुल्ला ने कहा कि अगर ये सिद्ध कर दें ये विद्वान हैं तो जो सजा मुकर्रर करेंगे मुझे कबूल है। उसने कहा कि कैसे सिद्ध करें, इन्होंने इतने इतने शास्त्र पढ़े हैं, कहीं से कुछ भी उठाकर पूछ सकते हो, हदीथ से पूछना है या कुरान शरीफ से कहीं से पूछना है, इतना तो मैं ज्ञानी हूं नहीं। मुल्ला ने कहा मेरा तो बड़ा सरल सा प्रश्न है, जेब में से एक रोटी निकाल लेता है। महोदय पहले को कहता है अपने मुबारक हाथों में इस जरा रोटी को पकड़ेंगे, ये क्या है आपने पकड़ा? पहले ने कहा ये रोटी है, इसमें क्या सोचना है। हाथों से उसके रोटी लेके दूसरे को पकड़ा देता है, ये क्या है आपके हाथों में? दूसरे ने कहा भाई ये गेहूं से बना हुआ है। तीसरे लेके तीसरे के हाथ में पकड़ा देता है, ये गेहूं में पानी डाल के गुथा हुआ है, उस पर आग से तपी हुई एक चीज है जो मनुष्य की क्षुधा को दूर करने के लिए, तुम्हारी भूख को मिटाने के लिए बनी है। उसके हाथ से लेके चौथे को दे देता है, वो कहता है ये जीवन है। उससे लेके पांचवे को दे देता है, उसने कहा ये सब कुछ है, यहीं से आदि यहीं से अंत है, ये ना हो तो कुछ नहीं। रोटी वापस लेके जेब में डाल लेता है, कहता गांव वालों हे सरपंच आप देखिए ये पांच लोग एक रोटी को तो लेकर बता नहीं पाए एक ही चीज के क्या है, सबकी अलग अलग विचारधारा है, ये खुदा के बारे में क्या खाक बताएंगे। एक रोटी इनके हाथ में पकड़ाई, पांचों ने इतना बड़ा भाषण दे दिया, किसने कहा ये है, किसने कहा वो है, किसने कहा ये है, अरे खाके देखो क्या है, एक स्वाद ही तो चखना है। तो एक ही खाक से फितरत के ताजादात कितने, जब हम खोज में निकलेंगे जितने लोगों से पूछोगे उससे दुगने मत मिलेंगे, और उससे मनुष्य भ्रमित होता है। जिस दिन आप तय कर लेंगे कि जो भी है इस कायनात में, जो भी सत्ता है मेरे सामने आ जाए, मैं यहीं बैठकर एक सच्चा कर्म करूंगा, एक शुद्ध कर्म करूंगा, एक सत्य पर स्थित रहूंगा, बाकी सब चीज अपने आप वैसे ही घटित होती चली जाती है। कहीं जहमत की सुलगती हुई पतझड़ का समा, कहीं रहमत के बरसते हुए सावन देखूं। जहमत अर्थात कठिनाई, कहीं तो ऐसा कोई मनुष्य है जो जीवन पर्यंत कठिनाई का ही सामना कर रहा है, कोई ऐसा है जो वाक्य में ही ऐसे घर में पैदा होता है कि मुख में चांदी का चमचा रखा हुआ है। हमारे एक जानने वाले थे, उनका भी विवाह नहीं हुआ था, तो एक दिन वो रसोई में चले गए। उन्होंने कहा मैं रोटी बना लेता हूँ। उनके पिता ने कहा बेटा रोटी बनाना मत सीखना, शादी के बाद वही बनाते रहोगे। हर दूसरे दिन बीवी का सिर दुखेगा, बोलेगा आज आप रोटी बना दो, ना आती होगी ना वो बोलेंगे। कभी देख लेना, जो व्यक्ति काम करने की क्षमता रखता है वो बेचारा काम ही करता रहता है। जो हाथ उठा देता है, जो आलसी है, उसको ना कोई काम देता है, देता तो रोता है, वो अपना मजे से एक तरफ होकर बैठा रहता है। जो बेचारा काम करता है वो काम ही करता रहेगा। अर्थात मिथ्याश व्यवसाय अस्ते प्रकृति स्वाम नियोक्षति, रहमत के बादल भी उस पर बरसते हैं जो पुरुषार्थ के मार्ग पर चलता है। क्योंकि जो पुरुषार्थ नहीं है, कौन थे तुम्हारा ये जो संकल्प है झूठा हो जाएगा। क्योंकि यदि ईश्वर ने, प्रकृति ने क्षमता दी है तो वो कार्य भी लेगी। रोके कर लोगे या हंस के कर लोगे, ये आपके ऊपर है। और इस रहस्य का कोई सरल सा उत्तर नहीं है, इसीलिए जीवन एक गोरख धंधा है। इस प्रकरण में इतना ही।